Hare Krishna, Hare Krishna.
There is a director, yes? Or who came with you apart from Vijayawada?
From Vijayawada,
So all of you have taken prasadam? Yes? Yes? Yeah? Yes? You had? No?
After prasadam.
Huh? Little prasadam. Little prasadam. Stomach is not full.
No, it's satisfied.
Satisfied. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
यशोद नंदन व्रज जन रंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
His divine grace of her Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai, Shri Shri Gokulana Radha Gokulananda Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Kartik Maas Ki Jai, Nitai Gopremananda Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Om Jnana Timirandhasya
Jnananjana Shalakaya Chakshurunditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Rao Vishram Sapitam Yena Bhutale Svarup Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sarajatam Sagradarunathamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagradarita Shri Vishakhanditam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Vandaye Bhakti Vedanta Swami Nitiname Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम
हरे हरे तो हिंदी में ही करेंगे हरे कृष्णा सबने ठीक से प्रसाद लिया ना तो अभी जो 5-6 दिन आप सब यहाँ वृंदावन में रहोगे तो इसका पूरा पूरा लाभ आप सब उठाइए और विशेष करके अभी कार्तिक के समय में अभी आप सब आए हैं ये बहुत ही विशेष समय है बहुत ही पावन समय है। वैसे तो कार्तिक महीना बहुत पावन माना जाता है और विशेष रूप से वृंदावन में कार्तिक महीने को बिताना और यहाँ पे भक्ति करना ये बहुत ही प्रभावशाली एक साधन बताया गया है हमारे साधन भक्ति के अंगों में से। पांच जो भक्ति के प्रमुख अंग हैं जिसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, उनमें से एक है मथुरावास या व्रज में निवास करना। आपको पता है बाकी चार कौन से हैं? जो 64 अंग हैं साधन भक्ति के, उनमें से पांच महाप्रभु बताते हैं सबसे श्रेष्ठ है। कौन से हैं? पहला नाम संकीर्तन, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा श्रद्धाय श्री मूर्ति का सेवन अर्थात अचात ग्रह की सेवा, तीसरा फिर चौथा साधु संग भक्तों का संग, और पांचवा मथुरावास। मथुरावास मतलब वृंदावन का वास। तो फिर हम सोचेंगे कि वृंदावन में वास करना है तो हम फिर सब बेलगाम छोड़ के हम यहाँ आके वृंदावन में रहेंगे। लेकिन हम सब आके वृंदावन में रहेंगे तो पहली बात यह है कि जगह नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि सभी लोग आके वृंदावन में रहेंगे तो विश्व भर में प्रचार कैसे होगा। प्रभुपाद यहाँ वृंदावन छोड़ के गए थे 70 साल की आयु में, वृंदावन को दुनिया भर ले जाने के लिए। केवल शारीरिक रूप से वो वृंदावन को छोड़ के गए लेकिन अपने हृदय को वृंदावन बनाकर चले गए। उनके हृदय में वृंदावन था, इसलिए वो जब गए तो वृंदावन छोड़ के नहीं गए, वृंदावन को अपने साथ में हृदय में लेकर गए और अपने हृदय में जो स्थित वृंदावन था वो उन्होंने दुनिया भर में वितरण कर दिया। तो ये प्रचार का भाव है। एक भाव होता है भजन आनंदी, ये एक तरह के भक्त होते हैं जो केवल अपने उद्धार के लिए अपने भक्ति के लिए कार्य करते हैं, अपने साधन भजन में ही रुचि रखते हैं और उनको प्रचार में इत्यादि रुचि नहीं होती है। हाँ, कई ऐसे अधिकतर भक्त तो ऐसे नहीं होते हैं, परंतु अन्य जो मुनि वगैरह होते हैं उनकी भावना अक्सर ऐसे होती है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। वो कहते हैं कि प्राय ऐसे देखा जाता है हे प्रभु कि जो मुनिगण हैं वो केवल अपने उद्धार के लिए स्वविमुक्ति कामा, उनकी इच्छा केवल अपने स्वयं की मुक्ति होती है, इसलिए मौनम चरंती, कभी कभी मौन व्रत धारण करते हैं, कभी कभी एकांत स्थानों में जाके विचरण करते हैं। न परार्थ निष्ठा, उनको अन्यों के उद्धार के लिए कोई मन में इच्छा नहीं होती है। तो भक्त लोग ऐसे नहीं होते हैं, भक्त लोग बहुत कृपालु होते हैं, वो चाहते हैं कि ये कृष्ण भक्ति का संदेश सबको पहुंचाया जाए, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस भौतिक जगत के दुखों से सदैव मुक्त होने के लिए। तो ये आचार्यों की भावना है, प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों की भावना है, और इसलिए हम लोग भी इस प्रचार के कार्य को स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के उदाहरण से सिखलाया कि कैसे हमें केवल भजनानंदी न होकर गोष्ठानंदी होना चाहिए, अर्थात अन्यों के भलाई के लिए कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार धर्म के तीन महत्वपूर्ण खंभे हैं। कौन से हैं वो तीन खंभे?
वैष्णव सेवा,
हाँ, वैष्णव सेवा,
जीव
दया, नामे रुचि। तो भगवान के पवित्र नामों के भजन कीर्तन आदि में रुचि रखना, अर्थात भगवान के पवित्र नामों को लेते रहना प्रीतिपूर्वक। तो ये रुचि जागृत करना भगवान के शुद्ध नामों के प्रति, ये धर्म का एक महत्वपूर्ण खंभा है। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि हम केवल नाम जप करते बैठेंगे अकेले। हम कहीं बरसाना में बैठ के गए, एक कुटिया बनाई अपनी और हम बैठ गए, ऐसा नहीं। ये भजन आनंदी हो जाता है। और न केवल इससे प्रचार हम नहीं कर पाएंगे, परंतु हम उस योग्य भी नहीं है कि भक्तों के संग को छोड़कर किसी एकांत स्थान में जाके हम बैठ जाएं। ये संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए नाम की रुचि जो है वो भक्तों के संग में पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। इसलिए इसको संग कीर्तन कहते हैं, सम्यक कीर्तन, जो परिपूर्ण कीर्तन होता है, जो भक्तों के संग में ही संभव होता है। एकांत स्थान में ये संभव नहीं है। संभव है तो केवल हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के लिए संभव है। लेकिन कौन कह सकता है कि मैं हरिदास ठाकुर की तरह हूँ, कि मैं को एकांत स्थान में जाके 190 माला रोज करूँगा, मैं केवल 2 घंटे सोऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, सब जो बाकी करना है, खाना पीना सोना सब 2 घंटे में, और बाकी 22 घंटे केवल जप करूंगा। ये संभव है? बाकी हमारा तो उल्टा होता है ना, 2 घंटा जप होता है, बाकी कामों के लिए 22 घंटे लग जाते हैं। तो नामे रुचि तो करना है, लेकिन भक्तों के संग में नाम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो भक्तों के संग में आके हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और तरह तरह की सेवा करनी चाहिए। लेकिन भक्तों के बीच में रहते हुए यदि हमारे भीतर घमंड रहा, अहंकार रहा, स्वार्थ रहा, तो फिर भक्तों के संग में हम अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि भक्तों के संग में रहकर एक सेवा भावना को हम जागृत करें। और ये सेवा भावना शुरू होती है भगवान के भक्तों से, इसलिए वैष्णव सेवा। तो नाम रुचि के बाद फिर है वैष्णव सेवा। वैष्णवों की सेवा अच्छी तरह से करने से नाम रुचि भी आ जाएगी अपने आप में। अन्यथा केवल अपने प्रयास से नाम के प्रति रुचि जागृत करना ये बहुत मुश्किल होता है। परंतु यदि हम अपने आप को नम्र बनाते हैं और वैष्णवों के संग में रह के उनकी सेवा करते हैं, तो फिर भगवान के नाम और कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। ये हम एक भागवत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और साथ साथ हम लोग केवल भक्तों के संग में बैठेंगे कि हम कीर्तन का, भगवान के नाम का, कथा का आनंद ले रहे हैं और वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो आपस में हमारा ही भला होगा, फिर अन्यों का क्या? जब तक हम भक्तों के अलावा अन्यों के पास भी नहीं जाएंगे ये नाम का संदेश पहुंचाने के लिए, तो वो लोग भक्त कैसे बन सकते हैं? और यदि ऐसा कोई हमारे साथ नहीं करता तो हम कैसे भक्त बनते? तो हम भी भक्त नहीं बनते, हम हमारी बाहर की दुनिया में ही रहते। तो किसी के अंदर तो ये प्रचार की भावना थी, किसी ने बाहर आके भक्तों के समाज के बाहर आके कुछ हमसे 2 शब्द कहे, इसलिए हमने स्वीकार किया इस पद को। तो ये हमारा एक ऋण है जो हमको चुकाना है। वैसे तो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे इस ऋण को, परंतु प्रयत्न करते रहना है।
और ये ऋण चुकाया जाता है अन्य जीवों के प्रति दया करने से। तो दया कैसे की जाती है? दया दो प्रकार से की जा सकती है, एक शरीर के प्रति दया और दूसरा आत्मा के प्रति दया। अब शरीर के प्रति दया ठीक है, ये तो होना है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय कोमल होता है, इसलिए भक्तों के प्रति या अन्यों के प्रति वो करुणा की भावना रखते हैं और किसी का दुख सहन नहीं कर सकते हैं, तो ये भाव भी ठीक है। परंतु इससे श्रेष्ठ है आत्मा के प्रति दया, जो है कृष्ण भक्ति उन तक पहुंचाना। तो ये जीवे दया मतलब प्रचार करना नाम संकीर्तन और कथा के द्वारा। तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग में, खास हर एक युग में, लेकिन विशेष करके इस कलयुग में जब सारे दुर्गुण बहुत ही बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं, तो हमें भी इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए और दोनों अपना साधन भजन अच्छी तरह से करना चाहिए और फिर प्रचार के भाव में भी हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और इस युग में सारे दुर्गुण दिखाई देते हैं सब जगह। लोगों को बिल्कुल आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं है और पाप करने की प्रवृत्ति तो बहुत तीव्र हो गई है सबकी, और नरकीय अवस्था बन रही है। इसलिए कलयुग के अंदर नाम संकीर्तन के द्वारा और कृष्ण कथा के द्वारा हमें उद्धार करना है सभी लोगों का। सबसे पहले जब हम प्रचार करते हैं तो भलाई हमारी होती है, जो बोलने वाला होता है उसकी भलाई होती है और सुनने वाले की भी भलाई होती है। वैसे संकीर्तन, कीर्तन शब्द में कथा भी आ जाता है, नाम भजन भी आ जाता है, सब आ जाता है। कीर्ति का गान करना ये है कीर्तन। तो कलयुग आप जानते हैं ये चौथा युग है। कौन से हैं चार युग? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। और इनकी अवधि क्या है? कलयुग की अवधि कितनी है? 432,000 साल। लेकिन देवलोक के समय के तुलना में कितना है? 6 महीना, वहाँ का 1 दिन, ठीक है। लेकिन कलयुग पर कितना होगा? कलयुग की अवधि है 1200 दिव्य वर्ष, देवलोक के 1200 वर्ष, 1200 वर्ष, ये कलयुग की अवधि है। इससे ये फिर 432,000 ये आता है। और द्वापर युग की अवधि कितनी है? मतलब कितना? इससे दुगना, इससे दुगना, अर्थात 2400 दिव्य वर्ष। और फिर त्रेता युग कितना है? कलयुग से 3 गुना ज्यादा, तो 3600 दिव्य वर्ष। और सत्ययुग 4 गुना कलयुग से, तो 4800 दिव्य वर्ष। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 1, 2, 3, 4 मिलाओ कितना हुआ? 10। तो कलयुग से 10 गुना ज्यादा ये चतुर्युग कहलाता है या दिव्य युग कहलाता है। ये हुए कितने वर्ष? 12,000 दिव्य वर्ष। तो ये है एक चतुर्युग, और फिर हर एक चतुर्युग ऐसे दोहराते रहता है, एक के बाद आते रहता है। तो अब कलयुग चल रहा है। अब धर्म के 4 खंभे होते हैं, आपको पता है कौन से है धर्म के 4 खंभे? श्रीमद् भागवत के 1 स्कंध के अनुसार संस्कृत शब्द कौन सा है? दया। दया, फिर सत्यम शौचम, शौचम मतलब क्या, स्वच्छता, और चौथा तप या तपस्या। तो ये चार धर्म के खंभे हैं। तो जितने भी धर्म हैं ये इन चार खंभों पे आधारित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये चार युग आगे चलते रहते हैं एक के बाद एक, तो इन चार खंभों का गठन होते रहता है। सत्ययुग की शुरुआत में ये चारों खंभे बहुत ही बलवान रहती हैं, सुदृढ़ रहती हैं, और सारे लोग इनका पालन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्ययुग से त्रेता आता है, त्रेता से फिर द्वापर, द्वापर से कली, इनका घटन होते 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 जब कलयुग आ जाता है तो इसके तीन खंभे प्राय नष्ट हो चुके होते हैं और केवल एक खंभा कलयुग की शुरुआत में थोड़ा बहुत रह जाता है। कौन सा है वो खंभा? सच्चाई या सत्यम। लेकिन कलयुग के थोड़े से शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वो भी अभी लड़खड़ा रहा है ना। आपको पता है ना कि जब महाराज परीक्षित अपनी तलवार, अपने घोड़े पे सवार होकर अपने धर्म विचरण, अपने राज्य में विचरण कर रहे थे, जैसे कि राजा को करना चाहिए, सब जगह अपने राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, प्रजा सुखी और सुरक्षित है ना, सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं ना, ये सब देखने के लिए राजा को घूमना पड़ता है, प्रजा के बीच में जाके देखना पड़ता है। तो राजा परीक्षित जब गए थे तो एक बार उन्होंने क्या देखा?
हाँ, राजा के वेश में,
राजा के वेश में एक शूद्र क्या कर रहा था? गाय और बैल को मार रहा था। और गाय तो बहुत पीड़ित अवस्था में थी और बैल की क्या दशा थी?
तीन पैर,
बैल एक पैर पे खड़ा था और एक पैर क्या था? सत्यम, क्योंकि ये बैल मूर्तिमान धर्म था और इसके चार पैर में से तीन तो तोड़े गए थे और ये चौथा वाला था उस पर लड़खड़ा था, वो भी उसके ऊपर आक्रमण कर रहा था मूर्तिमान कली। इसका मतलब है कि जो भी एक धर्म का गुण बच गया है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर भी अभी जोरदार आक्रमण हो रहा है। तो कलयुग में अभी केवल 432,000 वर्षों में से 5,000 वर्ष ही बीते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि सत्य का कितना घटन हुआ है। प्राय अभी सत्य नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं वो तो बात रही अलग, लेकिन मूल रूप से सत्य का आधार लेना अर्थात ये समझना कि भगवान परम सत्य हैं और उनका आश्रय हमें लेना चाहिए। तो ये कलयुग की पहचान है कि जिसमें सारे दुर्गुण एक के बाद एक बढ़ते रहते हैं और सद्गुणों का घटन होता है और उनका विनाश होता है। तो श्रीमद् भागवत में जगह जगह ये बताया गया है, जैसे कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही कहा गया है, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौवस्मिन् युगे जनाः मंदासुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। कि प्राय ऐसे देखा जाएगा कि लोग इस कलयुग में अल्प आयु के रहेंगे, कलौ अस्मिन् युगे जनाः, कि इस कलयुग में जन जो है, जो लोग हैं वो अल्प आयु के रहेंगे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः, उपद्रुता हमेशा विचलित रहेंगे, साथ साथ मंद बुद्धि के रहेंगे, हमेशा विचलित बुद्धि के रहेंगे, कभी शांत नहीं होंगे और गलत गुमराह किया जाएगा उनको, गलत रास्ते में उनको लोग ले जाएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे उनको गलत मार्गदर्शन करके गलत रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसे कलयुग के लोगों की दशा होगी। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बहुत विस्तार में वर्णन है, व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, इनमें कई श्लोक कई श्लोकों में सुखदेव व्यास देव जी बताते हैं कि कलयुग की दशा कैसी होगी। तो अच्छा ये ऊपर ये वाला चार्ट ये ऊपर इधर हुक है ना इसका। तो श्रीमद् के 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षणों का वर्णन हम देखते हैं और इस दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कलयुग के लोग क्या करेंगे कैसे होंगे। तो हम देखते हैं श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादयः कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलं स्मृतिः श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादयः कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलं स्मृतिः बोलिए कालेन बलिना राजन हे राजन कलयुग के बल से के प्रभाव से बलिना क्योंकि कलयुग बहुत प्रभावशाली और बलशाली हो जाए तो ऐसे कालेन काल के प्रभाव से कलयुग के कलयुग के समय में क्या होगा। ततः च अनुदिनम दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ऐसे आठ वस्तुएं हैं नंक्षति जिनका विनाश हो जाएगा। तो एक के बाद एक इन आठ चीजों का उल्लेख यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले है धर्म, धर्म का गठन होगा। दूसरी बात सत्यम, तीसरी बात शौचम, शौचम अर्थात स्वच्छता, क्षमा, क्षमा अर्थात सहनशीलता, क्षमा, फिर उसके बाद दया, दया अर्थात कृपा भावना, दया भावना। फिर छठा है आयु, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। सातवा है बलम, लोगों का शारीरिक बल ये भी कम हो जाएगा। और आठवा है स्मृति, सबकी स्मृति शक्ति भी कम हो जाएगी। तो इसमें कलयुग के प्रभाव से जिन आठ चीजों का गठन होता है उसका उल्लेख इस श्लोक में है। हम सब अनुभव कर रहे हैं ना, अपने ही जीवन में करते हैं और सारे समाज में जहां भी हम देखते हैं ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इन आठ चीजों का गठन कैसे हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। तो जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका घटन हो जाएगा और जो दुर्गुण हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले है धर्म। धर्म ये एक ऐसा शब्द है संस्कृत में जिसका वर्णन विवरण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसके तरह तरह के तात्पर्य हो सकते हैं। धर्म का अर्थ साधारण दृष्टि से कर्तव्य भी हो सकता है, धर्म का अर्थ भगवान की भक्ति भी हो सकता है, धर्म का अर्थ अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं या जो रीतियां हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करना, ये भी हो सकता है। धर्म का अर्थ न्याय भी हो सकता है। तो जो भी हो इन सब, धर्म वास्तव में धरी जो सारे ब्रह्मांड को धारण करता है वो धर्म है। धर्म का पालन यदि नहीं होगा तो ये सारा ब्रह्मांड भी, ये सारी सृष्टि भी टिक नहीं पाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए सारे सृष्टि के पालन के लिए ये धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। और धर्म के पालन में एक अवश्य चीज रहती है और वो है कि अधिकारी के प्रति सम्मान। स्वतंत्रता को सीमित रख के किसी अधिकार को, किसी अन्य श्रेष्ठ अधिकार को स्वीकार करना, आप समझ रहे हैं इस बात को, अथॉरिटी, किसी भी एक श्रेष्ठ अथॉरिटी को, अधिकार को स्वीकार करना। लेकिन जब धार्मिकता नहीं रहती है तो लोग किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लोग स्वतंत्र बनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मेरे मन में जो आए मैं वही करूंगा। और ये ऐसे ही देखा जा रहा है ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है जो भी अधिकारी व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव कम होते जा रहा है लोगों के ऊपर, और जो श्रद्धा सम्मान आदि लोग रखते हैं अधिकारियों के प्रति वो भी घटते जा रहा है। और आजकल दोनों ओर से समस्या दिखाई दे रही है। एक कि जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं, जैसे राजनेता हैं या कोई तरह तरह के लोग हैं, वो आदर्श नहीं होते हैं और अधिकतर उनके ऊपर जो निर्भर हैं उनका वो शोषण करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। तो इसलिए जो प्रजा है वो भी श्रद्धा खो बैठती है। तो एक श्रद्धा की समस्या है। तो प्रजा सोचती है कि हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी इनकी बात क्यों मानेंगे। तो इससे क्या होता है कि सारे समाज में चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हर जगह अधिकार किसी का भी किसी व्यक्ति का भी रह नहीं गया है, बहुत कम रह गया है। तो धर्म का गठन होने का तात्पर्य इस संदर्भ में ये है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मानना नहीं चाहता है, और ये एक बहुत ही गंभीर अवस्था है, अच्छी अवस्था नहीं है। क्योंकि विशेष करके जब कोई व्यक्ति जो अपने मन को वश में नहीं कर पाया है और जो अपने मन के रथ पे सवार होकर इधर उधर दौड़ रहा है, मनोरथे नासति धावतो बही, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है और जिसके हृदय में तरह तरह के भौतिक इच्छाएं हैं, दुर्गुण हैं, और वो यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहता है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने आप को ही इस काबिल समझता है कि मैं सारी समस्याओं का हल निकाल सकता हूँ, मैं अपने आप को सुखी बना सकता हूँ, तो फिर क्या होता है, समाज में उत्पात हो जाता है। जब अधिकारी व्यक्ति का पालन नहीं किया जाता, के वचनों का पालन नहीं किया जाता, और जब आदर्श अधिकारी व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो फिर मंगलकारी कार्य नहीं हो सकते हैं समाज में, मांगल्य का घटन हो जाता है, चीज में हर दुनिया में कोई शुभ चीज नहीं रह जाती, सब अशुभ हो जाता है। शुभ मतलब वो चीज जिसमें सबका भलाई होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबकी समृद्धि बढ़नी चाहिए। परंतु आज क्या हो रहा है कि हम किसी की बात मानना नहीं चाहते, शास्त्रों की बात मानना नहीं चाहते हैं, तो हम केवल अपनी भलाई चाहते हैं, और वो भी हम ये नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है। हम केवल देहात्म बुद्धि के अनुसार हम स्वार्थी होकर भोग करना चाहते हैं, भोग को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। तो हमारे भोग के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु शास्त्रों में हमारे भोग वृत्ति के ऊपर लगाम लगाया गया है, सीमाएं रखी हुई हैं। शास्त्रों ने कहा है ठीक है आपको भोग करना है करो, लेकिन इन सीमाओं के भीतर करो और इस तरह से भोग करो। परंतु घमंड के कारण और अज्ञान के कारण लोग शास्त्रों की बात नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए बिना कोई रुकावट के, बिना कोई नियम के भोग करना चाहते हैं। और ये वृत्ति अभी बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा। तो ये धार्मिकता का गठन सब जगह हो रहा है, और आजकल हम ये भी देखते हैं कि भगवान को नकारना, क्योंकि धर्म के अनुसार तो आस्तिकता होनी चाहिए, आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है, नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, जो शास्त्र में विश्वास नहीं रखता उसको भी नास्तिक कहते हैं। तो आजकल लोग शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए 20वीं सदी का धर्म क्या हुआ है, विज्ञान। ये 20वीं सदी का धर्म है। लोग जो विज्ञान का पालन करते हैं वो कहते हैं धर्म का पालन नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो गलत है। वो धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक नया धर्म बना लिया है। क्या है वो नया धर्म, विज्ञान। और उनके जो ऋषि मुनि कौन है, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो उनके अधिकार वो स्वीकार करना चाहते हैं। और क्योंकि ये भगवत विहीन धर्म है और इसका आधार ही नास्तिकवाद है, इसलिए कैसे ऐसे धर्म के पालन से, तथाकथित धर्म के पालन से कल्याण हो सकता है। और क्योंकि वो प्रामाणिक जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं ऋषि जो संत होते हैं, आचार्य गण होते हैं, उनके वाणी को वो नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान क्या है, धर्म क्या है, भगवान के नियम क्या है, उनको नहीं पता, और उनको प्रस्तुत करने के लिए भी वो शक्ति उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए उन्होंने जो धर्म बनाया हुआ है विज्ञान का, इसमें और भागवत धर्म में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है अभी, क्योंकि उन्होंने भागवत धर्म के प्रतिनिधियों का अधिकार स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अपने अपने मनमाने ढंग से वो नए नए धर्म बनाते हैं, और क्योंकि अभी इतना पार्थक्य, इतना भेद हो गया है आधुनिक धर्म में, तथाकथित धर्म में और सच्चे भागवत धर्म में, कि जो कई धार्मिक लोग हैं, जो धर्माचार्य होते हैं, वो भी अपने धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ लेते हैं आधुनिक विज्ञान से उसको उसका मेल कराने के लिए। जैसे कि हम तो जानते हैं कि सृष्टि के पीछे कोई एक व्यक्ति है, बुद्धि है, जिनको हम भगवान कहते हैं। भगवान के बिना तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल थोड़े बहुत ऐसे मुनि हुए हैं जिन्होंने नास्तिक धर्म का स्थापना किया है, जैसे डार्विन आदि। तो डार्विन महाशय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने नहीं बनाया, भगवान है नहीं, कि जीवन का स्रोत क्या है, अणु, अणु और जो रसायन हैं जो प्रकृति में पाए गए हैं, उनके मिश्रण से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसे उनका कथन है। तो ये एक वास्तव में आसुरी सिद्धांत है। तो उनका जो सिद्धांत है कि बहुत सरल छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो भी आपस में मिले, उनमें परिवर्तन हुआ, ऐसे होते 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 पेड़ बने, उसके बाद में जलचर प्राणी सब बने, और बनते बनते फिर पंछी बने, पशु बने, फिर अंत में मनुष्य बना। और ये 20वीं सदी में इतना बलवान बन गया ये सिद्धांत कि वैज्ञानिक लोग ही सबसे बड़े गुरु हो गए, है ना। और इसलिए कोई व्यक्ति यदि इनके विरुद्ध कुछ भी कहता तो उसको लोग नकार देते। तो पश्चिम देशों में जो ईसाई धर्म है, उनके जो आचार्य हैं, जैसे वैटिकन वगैरह हैं, उन्होंने क्या घोषणा की एक बार, कि हाँ, हम डार्विन से पूरी तरह से विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्होंने काफी युद्ध किया लेकिन वो ठीक से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डार्विन तो पूरी तरह से गलत नहीं है, मानते हैं, हमारे कहना ऐसे है कि केवल भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, इसके बाद भगवान फिर हट गए। वैसे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ने सृष्टि का निर्माण करके सब छोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे डार्विन ने कहा वैसे फिर एक के बाद एक सब होते गए। तो ऐसे वो अपने ही धार्मिक सिद्धांतों में वो ऐसे परिवर्तन करते हैं ताकि उसका मेल आधुनिक विज्ञान से हो जाए, परंतु वो समझते नहीं है कि आधुनिक विज्ञान ये तो बदलता रहेगा, 100 साल में भी कितने परिवर्तन हो गए, और आने वाले 100 सालों में भी और भी कितने परिवर्तन हो जाएंगे। ये स्थायी रूप से ज्ञान नहीं है, ये परिवर्तनशील ज्ञान है। लेकिन भगवत गीता जैसे है वैसे ही है, पहले 5000 वर्ष पूर्व जो भगवत गीता थी वो आज भी वही है, ये ज्ञान बदला नहीं है। तो हमारे सनातन ज्ञान को का परिवर्तन करके उसको अशाश्वत मानसिक चिंतन के ऊपर आधारित जो सिद्धांत है उनसे मिलाने के लिए हम ऐसे परिवर्तन सनातन ज्ञान में करेंगे तो ये तो मूर्खता होगी। इसलिए न हम इधर के रह जाते हैं न उधर के रह जाते हैं। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सनातन वस्तु को त्यागते हुए किसी अस्थाई अशाश्वत वस्तु की खोज में जाता है, वो दोनों चीजों को खो देता है। दोनों चीजों को मतलब जो टेम्पररी है, अस्थाई है, उसको भी खोता है, और जो शाश्वत चीज है, इटर्नल चीज है, उसको भी पाएगा भी नहीं। तो दोनों चीजें खो बैठता है, ना ये पाएगा ना वो पाएगा। तो उसी प्रकार से जो ऐसे ज्ञान में, सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, जो ऐसे उसको बदल फिर बदल करना चाहते हैं कि आधुनिक ज्ञान से उसका तालमेल हो जाए, तो वो ना इधर के ज्ञान को पाएंगे ना उधर के ज्ञान को पाएंगे। और इसलिए इतनी समस्या आजकल हो रही है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बतलाया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में। हम यदि कहेंगे ऐसे कृष्ण हैं और भगवान एक सांवले रंग के गायों का देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं, तो दुनिया हंसेगी या क्या सोचेगी, उन्होंने नहीं सोचा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो स्पष्ट जाके उन्होंने कह दिया। जिनकी सुकृति थी उन्होंने स्वीकार कर दिया, जो इस लायक नहीं थे इस चीज को समझने के लिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उसी प्रकार से हमें भी सही धर्म का पालन करना चाहिए। इसको भागवत धर्म कहते हैं। अपने मनमाने ढंग से धर्म नहीं बनाने चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, धर्म का गठन होना, इसका मतलब है कि प्रमाणिक जो सच्चा धर्म है, जो भागवत धर्म है, उसका लोग पालन नहीं करते हैं। उसके प्रति जो लोगों के अंदर विश्वास है वो कम होते जा रहा है, और नए नए धर्म बनते जा रहे हैं, उनमें लोग विश्वास करते हैं। इनमें से ये कई धर्म भगवान के ऊपर आधारित होते हैं और कई धर्म नास्तिकवाद के ऊपर आधारित होते हैं। फिर भी इन धर्मों के अंदर भी तरह तरह की समस्याएं आरंभ होती हैं। तो हमें चाहिए कि सही भागवत धर्म का आश्रय हमें लेना चाहिए। सही भागवत धर्म का आश्रय लेने से कलयुग के प्रभाव को रोका जा सकता है। लेकिन अन्यथा हम देखेंगे कि ये धर्म का गठन होते जा रहा है, गलत धर्मों को वो स्वीकार करते जा रहे हैं लोग। तो कलयुग में क्या देखा जाता है कि लोग सच्चे धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं। धर्म के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में रहती हैं। और यदि हम कहीं जाके कृष्ण के बारे में कहें स्कूल में, कॉलेज में, तो कहेंगे नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत को हमें पालन करना है, क्योंकि ये हिंदू भगवान है, इसलिए हम हिंदू भगवान के बारे में यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये भगवान हिंदू नहीं है। भगवान तो भगवान है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए कोई भगवान अलग है, ईसाइयों के लिए भगवान अलग है, नहीं, भगवान सबके लिए भगवान है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रदर्पिता। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो 84 लाख योनियों के ही उद्गम है, उनके पिता हैं, बीज प्रदाता हैं। तो ये धर्म है। जब हम सही तरह से भगवान को जान पाएंगे तो हम सही धर्म का पालन करेंगे। और जब भगवान को सही जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करने के बजाय अज्ञानवश हम कोई दूसरा सिद्धांत स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, तो फिर सच्चे धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो इसलिए पहले चीज इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलयुग में घटन होता है वो क्या है, धर्म। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, सत्यम। और सत्यम वो इसलिए होता है, क्यों होता है सत्यम या सच, सत्य। तो यदि हम किसी साधारण व्यक्ति से कहें कि सत्य का गठन हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हमारे दैनिक जीवन में लोग अभी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, इसका वो सही है, गलत नहीं है ये, लेकिन ये सत्यम का लक्षण है, ये असत्यम का लक्षण है ये, कि लोग ज्यादा झूठ बोलते जा रहे हैं आजकल। ये असत्यम अपने आप में नहीं है, ये असत्यम का लक्षण है। क्यों? क्योंकि असत्यम, असत्य का मूल कारण है परम सत्य भगवान को नहीं जानना या भूल जाना, क्योंकि भगवान परम सत्य है, और उस परम सत्य को जब हम नहीं जानते हैं, उनको भूल जाते हैं, तो फिर असत्य को हम स्वीकार करते हैं, और असत्य को स्वीकार करने के कारण फिर हम अपने मनमाने ढंग से नए नए तथाकथित सत्यों को स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। या हम कोई ऐसे गलत काम करेंगे तो सत्य भगवान है। श्रीमद् भागवत में देवतागण जब कृष्ण का आविर्भाव के बाद, कृष्ण जब देवकी माता के घर में प्रकट होते हैं, तो मथुरा के कारागार में वो आते हैं, कंस के कारागार में, और श्री कृष्ण देवकी माता की प्रदक्षिणा करते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। उस समय वो श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह के पुकारते हैं। वो दसम स्कंद है, पहला भाग जरा निकाल के दे। वो बतलाते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, और हर दृष्टि से वो सत्य सत्य कहते 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 हैं कि आपसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को जानेगा, जो भगवान की भक्ति का पालन करेगा, वो सत्य के बुनियाद पर खड़ा हो जाएगा। दसवें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवतागण प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो आठ तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहकर संबोधित किया है। कहते हैं आप ही सत्य व्रतम है, अर्थात आप सत्य से कभी हटते नहीं है, सत्य का व्रत आपने लिया है, इसलिए भगवान का एक नाम भी है सत्यव्रत। ये नाम आपने सुना है ना, सत्यव्रत? कहाँ सुना है? मत्स्य अवतार में राजा थे सत्यव्रत, आगे चल के वो क्या बने? वैवस्वत मनु बने, क्योंकि ये चाक्षुष मनवंतर के अंत में हुआ था, फिर आगे चल के वो वैवस्वत मनु बने। सत्यव्रत मुनि भी हैं, वो अलग सत्यव्रत हैं, जिन्होंने दामोदर अष्टकम प्रार्थना की रचना की है, वो अलग हैं, लेकिन श्री कृष्ण का भी नाम सत्यव्रत है। फिर सत्य परम, सत्य परम मतलब जो परम सत्य है। परम सत्य मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी कोई सत्य है जो परम नहीं है? क्या विचार है आप? जैसे आत्मा है, यह सत्य है ना? सत्य क्या है और असत्य क्या है बताइए, भगवद गीता के अनुसार कौन सा श्लोक है?
हाँ,
बोलो ना सब तो विद्युत कुछ लोग पता है नहीं सत्य की परिभाषा सत्य और असत्य तो क्या मतलब है इसका कि वास्तव सत्य है इसका कभी नाश नहीं होता घटन नहीं होता परिवर्तन नहीं होता विनाश नहीं होता और जो असत्य है वो कभी स्थायी रूप से शाश्वत रूप से नहीं रह सकता तो जो भी शाश्वत है इस परिभाषा के अनुसार वो सत्य है जो शाश्वत नहीं है वो असत्य है तो अब बताइए क्या क्या सत्य है और क्या असत्य है इस दुनिया में कौन सी चीज असत्य है भौतिक जगत क्या है भौतिक जगत सत्य है भौतिक शक्ति ये भौतिक सृष्टि सत्य है क्योंकि ये शाश्वत है परंतु इसके जो विविध प्रकार के नाम रूप होते हैं वो असत्य है ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत मिथ्या है परंतु इसके भीतर जो नाम रूप विविध रूप से प्रकट होते हैं वो असत्य है क्योंकि वो क्षणभंगुर थोड़े समय के लिए रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं तो ये भौतिक शक्ति ये सत्य है और क्या सत्य है इस जगत में आत्मा सत्य है क्योंकि आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है लेकिन शरीर असत्य इस दृष्टि से है कि वो विनाश इसका विनाश होता है तो ऐसे अनेक सत्य हैं लेकिन इनमें से परम क्या है श्री कृष्ण मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव जितने भी अन्य सत्य हैं वो मुझ पर आधारित हैं हे कृष्ण क्योंकि मैं परम सत्य हूँ मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो परम सत्य क्या है परम सत्य वो सत्य है जिनके ऊपर सारे अन्य सत्य निर्भर हैं और जो स्वयं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है वो अपने आप के ऊपर ही निर्भर है इसलिए भगवान को स्वाश्रय आश्रय कहा गया है स्व आश्रय आश्रय वो अपने ही आश्रय हैं उनको किसी दूसरे सत्य के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है फिर क्या सत्य परम फिर त्रिसत्यम त्रिसत्यम का मतलब है कि जो सृष्टि के तीनों वर्गों में सत्य ही रहते हैं उपस्थित रहते हैं सृष्टि के पहले भगवान हैं सृष्टि के दौरान भगवान हैं सृष्टि के संहार के बाद में भी भगवान रहते हैं ये चतुश्लोकी भागवत में से भी एक श्लोक है तो इसको इसका मतलब है त्रिसत्यम ये भगवान है जो सृष्टि के तीनों वर्गों में रहते हैं सत्यस्य योनिम सत्यस्य योनि मतलब जितने भी अन्य सत्य हैं जैसे आत्मा है भौतिक शक्ति है योनि उनके उद्गम है तो भगवान से ही अन्य सत्यों की उत्पत्ति होती है और क्योंकि वो उनसे उत्पन्न होते हैं तो उनके ऊपर निर्भर होते हैं इसलिए यहाँ कहा गया सत्यस्य योनिम फिर निहिचम च सत्य फिर वो स्वयं अपने आप को इस भौतिक सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर इन जो भी और सत्य है उसका पालन करते हैं सत्यस्य सत्यम और जितने भी चीजें यहां सत्य मानी जाती हैं उन सत्य चीजों की सत्यता भगवान है जैसे स्वाद रसो हम अपसु कौंते या पानी का स्वाद मैं हूं हे कृष्ण है ना प्रभास में शशि सूर्य यो हो जो चांद और सूरज की रोशनी है वो मैं हूँ। तो हर सत्य की सत्यता कृष्ण है। रित सत्य नेत्रम, तो जो भी सत्य जो बहुत मनोहर है, अभिराम है, मन को प्रसन्न करने वाला है, वो श्री कृष्ण है। सुनेत्रम सत्यात्मकम, पर सत्यात्मकम का मतलब है कि सत्य ही उनकी उनका सार है। आत्मा सत्य ही उनकी आत्मा है, अर्थात जो भी कुछ उनसे संबंधित है वो सत्य है। वन हुज वेरी एसेंस इज सत्य इज ट्रूथ सत्यात्मकम। तो भगवान के बारे में ऐसे आठ बार सत्य 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 से सत्य ऐसे आठ बार हर एक लाइन में तीन बार सत्य कहा गया, दो या तीन बार कहा गया। देवतागण ऐसे प्रार्थना करते, तो भगवान श्री कृष्ण इस दृष्टि से देखा जाए तो सत्य है। तो सत्यम का मतलब है कि श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण के शरण में आना। तो जब तक ये सत्य की बुनियाद नहीं रहेगी, केवल दुनियादारी में हम सत्य बोलेंगे तो इसका क्या मतलब फिर? प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि एक बार थोड़े ऐसे डकैत थे, उन्होंने एक बैंक के ऊपर छापा मार दिया, बैंक को लूट लिया और बहुत सारे पैसे ले लिए, और फिर वापस अपने घर में जाके उन्होंने जैसे पहले समझौता किया था कि हम चार लोग हैं और आपस में एक चौथाई का भाग हम बांट लेंगे हर एक को, तो जब घर लौटे तो ईमानदारी से उस चोरी का धन जो है उसका चार भाग कर दिया और चारों को समान रूप से दे दिया। अभी हम इतने ईमानदार हैं, वैसे कहा जा सकता है कि ईमानदार है थे तो सही, बांटने में तो उन्होंने ईमानदारी से बांट दिया, लेकिन गलती क्या है कि उस ईमानदारी की उस सत्यता की बुनियाद क्या है? वो झूठ है ना, वो गलत है। इसलिए भले इस दुनिया में ऐसे लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं, मैं बहुत सच बोलता, मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन केवल दूसरों को भला करना है, मैं अपने आप को अच्छा आदमी मानता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी का नुकसान किसी को नुकसान पहुँचाता नहीं हूँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरह से बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बताओ? अपने भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं के अनुसार निरीश्वर नैतिक, निरीश्वर नैतिक मतलब जो नैतिक हैं लेकिन निरीश्वरवादी नास्तिक हैं। वो कहते हैं भगवान की आवश्यकता नहीं है हमें, हम तो केवल नीति का पालन करेंगे लेकिन भगवान में नहीं मानेंगे। तो आपकी नीति का क्या मूल्य? फिर वही हुआ जैसे वो बैंक के डकैत हुए, है ना? क्यों? जब मूल नीति का पालन नहीं करेंगे, नीति जहाँ से आती है इसका पालन नहीं करेंगे, नीति बनाने वाले जो हैं उनको नहीं मानेंगे, तो आपकी नीति का क्या मतलब होगा? फिर आज आपकी ये नीति है, कल आपकी नीति बदल जाएगी, इसलिए ऐसे नीति में कोई मतलब नहीं है। तो सत्य का पालन करना मूल रूप से मतलब भगवान को का पालन, भगवान को मानना और भगवान के शरण में जाके उनकी सेवा करना। तो दूसरे शब्दों में जब कहा जाता है कि सत्यम इसका घटन होता है, तो इसका मतलब है कि लोग भगवान को नहीं मानेंगे, और क्योंकि धार्मिकता भी कम होती जा रही है सत्य भी कम हो जाएगा। और फिर इसके लक्षण तो अलग अलग हैं कि हाँ दुनिया में हर आदमी अब झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलना तो इतना अभी ज्यादा बढ़ गया है हर दृष्टि से। किस दृष्टि से झूठ का पालन हो रहा है, सत्य का नाश आधुनिक काल में हो रहा है, बताइए, थोड़े उदाहरण दीजिए। हाँ, शेयर मार्केट, हाँ, जैसे तरह तरह की जुआ है, शेयर मार्केट में आज पैसा लगाया और कल ही हमको उससे 10 गुना ज्यादा चाहिए, कोर्ट में। हाँ ठीक है, सत्यम आजकल। हाँ भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है वो भी एक प्रकार का असत्य है।
मनुष्य
चांद तक पहुँच, तो सबके आंखों में धूल डालना कि हम ये है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको सत्य से दूर ले जाना, आंखों में धूल झोंक के हमको सत्य से दूर ले जाना, ये भी एक धोखेबाजी है, चीटिंग है, हाँ विज्ञापन, बस ये हमारे कंपनी का ये खरीद लो सारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, ये हमारे कंपनी के तेल से भोजन बनाओगे तो फिर वाह ऐसा भोजन कभी और नहीं मिलेगा, और स्वास्थ्य का रक्षण भी होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे ये ले लो, लेकिन और उससे क्या नुकसान होगा उसको नहीं बताते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे, धोखेबाजी चल रही है व्यापार में, हर चीज़ में, हर जगह, समाज के, दुनिया के हर एक क्षेत्र में आजकल ये चल रहा है। तो ये सब लक्षण हैं। जब हम मूल सत्य भगवान के आश्रय को भूल जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये अन्य जो लक्षण स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे। तो ये है सत्य। तो धर्म का की ग्लानि होती है, सत्य का घटन भी होता है, साथ साथ शौचम, शौचम मतलब स्वच्छता। स्वच्छता तो अंदर की स्वच्छता है और बाहर की स्वच्छता है। अब अंदर की स्वच्छता तो बहुत बड़ी बात रही, बाहर की स्वच्छता भी नहीं पालन करते लोग। आगे चल के इसी अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बताने वाले हैं कि केवल स्नान करने से ही, स्नानम एव प्रसादनम, कि केवल स्नान करने के बाद मैं समाज में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए योग्य हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है इसका? यह क्या हो रहा है, कलयुग के दुर्गुणों के का वर्णन हो रहा है, कलयुग के लक्षणों का वर्णन हो रहा है। तो जब ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति केवल स्नान करने से, स्नान करने बाद सोचेगा अभी मैंने स्नान तो कर लिया, अब मैं समाज में बाहर जा सकता हूँ, अपने आप को दिखा सकता हूँ लोगों को, इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहे हैं शुकदेव जी? हाँ ये भी ठीक है कि अंदर केवल बाहर की स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता की कोई का कोई विचार नहीं है, ठीक है। और
शो ऑफ नहीं करना,
शो ऑफ नहीं, नहीं प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं स्नान के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भक्ति के धर्म को ये करने चाहिए, वो सब नहीं करना, केवल स्नान किया अभी हम योग्य हो गए। जैसे तिलक आदि से हम अपने आप को सुशोभित करते हैं, अपने शरीर को, फिर हमारा मन, हम घोषित करते हैं कि हमारा शरीर जो है मन, ये भगवान का मंदिर है। तिलक से सुशोभित करने से हम घोषणा कर रहे हैं सारे समाज के लिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, और इस ये हमारा शरीर मंदिर है, और इस हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। तो हम ये तिलक नहीं लगाते हैं, केवल स्नान करके लोग चले जाते हैं बाहर, सोचते हैं कि अभी हम योग्य हो गए बाहर रहने के लिए, समाज में जाएंगे। आजकल लोग वो भी नहीं करते हैं, है ना, स्नान भी नहीं करते, तो देखिए फिर कलयुग कैसी दशा है। सोचते हैं कि केवल थोड़ा परफ्यूम लगा लिया, सेंट लगा लिया, और फिर हम चले गए।
हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, एक स्टूडेंट हमारे रूम के पास ही रहता था, बहुत लेट उठता था वो, मुंह धोते समय साथ हम इतना अच्छा खाते हैं और सुअर सब गंदा खाते हैं, वो मुंह नहीं धोता, हम क्यों धोना चाहिए।
इसका मतलब है वो अपने आप को भी तुलना में समझ रहा था, है ना। तो ये है कलयुग, कलयुग में लोग ऐसे विचार करते हैं। तो अंदर की स्वच्छता बाहर की स्वच्छता का कोई विचार नहीं रहता है लोगों में। ऐसे स्वच्छता बाहरी स्वच्छता के भी अनेक नियम होते हैं जिनका पालन लोग नहीं करते हैं। दिन में 2 बार या 3 बार स्नान करना चाहिए, फिर शौच करने के बाद हाथ धो के सब करना चाहिए। जो शुचि और अशुचि का विचार होता है, ये बहुत से नियम हैं जो किसी सभ्य व्यक्ति को सीख लेने चाहिए। जब हम दूषित अवस्था में होते हैं तो किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विचार हैं। लेकिन आजकल किनको रुचि है इसके बारे में, इसलिए कोई नियमों का पालन आजकल नहीं करते हैं। इसके बाद क्षमा सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। क्यों सहनशीलता नहीं है? क्योंकि हृदय में क्रोध ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। और क्यों ऐसे है? क्योंकि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई भी वो मार्ग स्वीकार नहीं करता। जैसे भगवान का नाम का जप करना इत्यादि, क्योंकि हृदय के शुद्धिकरण के जो विधियां होती हैं उनका पालन नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, उनका हृदय सदैव अशुद्ध रहता है। और ऐसे ईर्ष्या और द्वेष और क्रोध आदि से युक्त जो हृदय होता है वो सहनशील कैसे हो सकता है? वो सहनशील नहीं होगा। क्रोध और सहनशीलता में गहरा संबंध होता है। सहनशीलता और नम्रता एक और क्रोध दूसरी ओर। क्रोध अधिकतर जब भौतिक स्तर पर प्रदर्शित होता है तो ये इसलिए होता है कि हम सहनशील नहीं हैं और नम्र नहीं हैं और हमारे मन में हृदय में बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो क्योंकि शुद्धिकरण की क्रियाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है? फिर लोग सहनशील नहीं हैं। और सहनशील नहीं है तो आपस में कुछ झगड़े होते हैं, छोटी सी बात को सहन नहीं करते हैं, कुछ बोल बैठते हैं, दूसरा आदमी उसको सहन नहीं करता है, फिर वो भी कुछ कह देता है, फिर इस तरह से वो बात बढ़ जाती है। इसलिए कलयुग में क्या होता है, छोटी सी बात के लिए बड़ा झगड़ा हो जाता है। वैसे तो कोई बात ही नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात बन जाती है। दया, फिर दया कैसे आएगा? जब तक हमारे मन में क्रोध है किसी के ऊपर दया कैसे कर पाएंगे? जब अहंकार है दया कैसे कर पाएंगे? जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसे क्रोध है, वो दया नहीं कर पाएगा सबके ऊपर। इसका भी घटन आजकल हो रहा है। अब देखते हैं मासूम प्राणियों की हत्या कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है आजकल। और आजकल शाकाहारी देश तो केवल एक ही रह गया है, भारत। और इस एक शाकाहारी देश में भी आजकल अधिकतर लोग मांसाहारी बन रहे हैं। शाकाहारी लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो लोग ज्यादा निर्दयी बनते जा रहे हैं, ज्यादा क्रूर बनते जा रहे हैं। जब दया नहीं होगी तो व्यक्ति क्रूर बन जाएगा। और जितनी हम पशुओं की हत्या करेंगे उतना हृदय क्रूर बन जाएगा। फिर मनुष्य की हत्या करने भी हमें कोई बुराई नहीं लगेगी। आपने पाइथागोरस नाम सुना है ना, पाइथागोरस ग्रीस देश के वो वैज्ञानिक थे पुराने समय में। तो उन्होंने कहा जब व्यक्ति पशुओं की हत्या करके उसको बुरा नहीं लगता तो धीरे धीरे से ऐसे अवस्था आएगी उसकी मन की कि जब मनुष्य की हत्या होगी तब भी उसको बुरा नहीं लगता। ये है पशु हत्या का फल, व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है, दया भावना नष्ट हो जाती है, फिर ये क्रूरता मनुष्यों के प्रति प्रकट हो जाएगा, पशुओं के प्रति, फिर पर्यावरण के प्रति, मनुष्यों के प्रति। और ये कलयुग में सब देख रहे हैं कि सब चीजों का घटन कितने तेजी से और बड़े पैमाने पे हो रहा है। और ये तो केवल 5000 वर्ष बीते हैं कली के। आयु हो बलम स्मृति ही, और लोगों की आयु भी कम होती जा रही है। पहले लोग 100 साल जीते थे कलयुग की शुरुआत में। शुरुआत में क्या, अभी केवल 50 साल पहले, 100 साल पहले भी ऐसे कितने लोग मिले रहते थे जो 100 साल के होते थे। 80-90 साल के तो बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की आयु बहुत कम होती जा रही है। इतना विज्ञान, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी दवाइयाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल, फिर भी लोगों की मृत्यु कम नहीं हो रही है। एक बार, क्योंकि ये एक झूठी बात है जो कि यहाँ लोग जल्दी मरते हैं, भारत में बहुत लोग मरते हैं। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि भारत में मोर्टेलिटी रेट, मतलब लोगों की मरने की रेट क्या है, बोला वही है जो अमेरिका में है, 100%। हर एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है ना। और यदि हम सोचेंगे कि हमारे विज्ञान के कारण अभी लोगों की मृत्यु को हम टाल रहे हैं, जो अब मृत्यु होने की दवाइयाँ आ गई हैं तो टाल के अभी उसकी आयु बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा देखेंगे कि क्या वास्तव में आयु बढ़ रही है लोगों की, ये हमें देखना चाहिए। पहले लोग 90-100 साल जीते थे, कितने ऐसे लोग दिखाई पड़ते थे, आजकल नहीं दिखाई पड़ते। आजकल कोई 70-80 साल का हो जाता है तो सोचता है मेरी मृत्यु कब आए और कब मेरे रिश्तेदारों से मैं बच जाऊँ। नहीं, रिश्तेदार भी सोचते हैं कब यहाँ से चले जाएं, कि कौन संभालेगा इनको, क्योंकि आजकल ना आर्थिक शक्ति है, ना मानसिक शक्ति है, ना वो सामाजिक परिस्थिति ऐसी है, ना कुछ, ना वो हृदय की भावना ऐसी होती है कि किसी दूसरे का देखभाल करें। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं तो दूसरों का देखभाल नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे अवस्था में वास्तव में क्या लोगों की आयु बढ़ रही है, नहीं, कम होते जा रही है। ये झूठ है जो सारे समाज में फैलाया जा रहा है विज्ञान के। और यदि उनका भी हम उनकी भी गणना करें जिनका गर्भपात हुआ है, फिर देखिए फिर नंबर कैसे बदल जाएंगे सारे। और कलयुग में आगे बढ़ते बढ़ते लोगों की आयु कम होती जाएगी होती जाएगी। और एक दिन ऐसे आएगा जब 30 साल का आदमी 25 साल का आदमी बहुत बूढ़ा माना जाएगा। जैसे अभी गाय की उम्र है ना, गाय 20 साल की हो जाती तो वो बहुत बुरी हो गई। जब आगे ऐसे समय आएगा जब कलयुग में कोई व्यक्ति 20 साल का हो जाएगा, अरे बहुत बूढ़ा हो गया, ऐसी अवस्था आ जाएगी। आजकल भी जो 40 साल का आदमी है वो पहले के ज़माने के 60-70 साल के आदमी के बराबर है। आजकल जितना भी हम शहरी जीवन जी रहे हैं इससे यही सब हो रहा है। यहाँ पिछले साल एक ब्रज के एक कोई व्यक्ति आए थे, हमारे पैर में कोई दर्द थी तो कोई नस अटक गया था, तो वो ठीक करने आए थे, किसी ने बुलाया। तो इतने वो 80 साल के थे, लेकिन ऐसे रीढ़ की हड्डी उनकी थी सीधी, और चलते समय भी उनकी आवाज़ भी वैसे, और जब उन्होंने पैर दबाया तो इतनी ताकत थी उनके अंदर कि हमने उनका हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ हटाया नहीं उन्होंने। इतनी ताकत थी। फिर वो कहता कि अभी भी मैं दिन में 1 लीटर दूध पीता हूँ। और फिर मुझे दंड बैठक करके दिखाया उन्होंने, 20-25 आराम से कर दिए, देखो कर रहा। तो एक सरल जीवन जी के जो निसर्ग के करीब है, और थोड़ा भगवान की भक्ति करके व्यक्ति रिष्ट पुष्ट हो सकता है, लंबी आयु जी सकता है। लेकिन आजकल के जीवन में, तनावपूर्ण जीवन में जो कृत्रिम रूप से हम बिता रहे हैं, हर चीज़ दूषित है, संग दूषित है, भोजन दूषित है, आहार सब कुछ दूषित है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, विचार दूषित है, इसलिए सबकी आयु कम होती जा रही, कम होती जा रही। पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं, कोई भक्त बता रहे थे, अलग अलग उनके पहचान के लोग, एक 19 साल का लड़का हार्ट अटैक होकर मर गया, 19 साल, और एक दूसरे जगह से 23 साल का लड़का हार्ट अटैक होकर मर गया। पहले तो हार्ट अटैक शब्द आते थे तो ऐसे 55-60 साल के नीचे कभी भी नहीं सुनाई पड़ता था ऐसे, लेकिन आजकल 60 तो क्या, 50-40 आजकल हम देख रहे हैं, 20-22 साल के लड़के हार्ट अटैक आके मर गए, और कैंसर कितना फैल रहा है। और किसी ने हमें कुछ चिट्ठी भेजी थोड़े दिन पहले, जिसमें किसी एक वैज्ञानिक पत्रिका में किसी डॉक्टर ने संशोधन करके लिखा है, दो डॉक्टरों ने 3000 वर्ष पूर्व से उन्होंने सारा संशोधन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैंसर ये मनुष्यों के कारण निर्माण हुआ है, ये प्रकृति की नहीं है, मैन मेड, क्योंकि हमारा जीवन इतना कृत्रिम है, मन इतना तनाव से भरा है, हमने सारा प्रदूषण सब जगह कर दिया है, पर्यावरण में, हमारे आहार में, हर चीज़ में, हमारे संबंधों में, हमारी जीवन शैली इतनी कृत्रिम हो गई है, लाइफस्टाइल, इसके कारण, जीवन शैली के दोष के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना पीना, रहन सहन कैसे होना चाहिए, हमें नहीं पता है, इसलिए ये सारे नए सब बीमारियां आ रही हैं। और कैंसर कितना फैल रहा है आजकल, कितने लोगों में, पहले भी तो हुआ करता था, लेकिन आजकल जिस संख्या में फैल रहा है, और लोगों के ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कितना खर्चा, कितना कष्ट, कई लोग मर भी जा रहे हैं। तो ये मिथ्या है कि विज्ञान आदि के कारण लोगों की आयु बढ़ाई जा रही है, यदि हम दुनिया भर से देखें कम होती जा रही है। बलम, शक्ति, ताकत, आजकल ताकत क्या रही, अभी आप सब वो देखो, सब दुबले पतले हमारे है ना, कोई रिश्त पुश हट्टा खट्टा कोई नहीं आजकल दिखाई पड़ता, सब बिल्कुल दुबले पतले, सब कमजोर होते जा रहे है ना, थोड़ा सा कुछ हुआ तो समस्या, फिर 2 दिन सो गए, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तुम्हारा शरीर भी ऐसा हो गया, ये कलयुग। और गांव के लोग, वो एक बिरला कभी ऐसे मिल जाएंगे, कोई गांव में भी आजकल सब बुरी आदतें शुरू हो गई हैं, और फिर स्मृति, याददाश्त हमारी तो कुछ रहती नहीं है आजकल, जो भी सुनते हैं प्रवचन समाप्त होने के पहले ही भूल जाते हैं, प्रवचन समाप्त होने के बाद जैसे ही बात बोली गई वैसे दूसरा वाक्य शुरू होने के पहले क्या बोला था वो भूल जाते हैं, स्मृति शक्ति बिल्कुल नहीं रही अभी लोगों की। पहले लोग सब श्रुतिधर हुआ करते थे, एक बार सुनते थे याद रह जाता था, जीवन भर। लेकिन आज बचपन में पढ़ा था वो भी नहीं आता। 13 × 14 कितना है? सोचना पड़ता है। बचपन से याद नहीं है, बचपन में पढ़ा था ना, किया था ना हम सब ने, कितनी चीजें कंटस्ट कर कंटस्ट से किया था, लेकिन अभी याद नहीं रहता। तो ये है कलयुग के लक्षण। अगली बार जब मिलेंगे और थोड़े कलयुग के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए उपाय एक ही है। ऐसे अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? केवल नाम का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। और भी कई लक्षण हैं जिनका वर्णन यहाँ है, उनके बारे में हम अगली बार बैठ कर और चर्चा करेंगे। तो ये 8 चीजें हैं। कौन सी हैं? एक एक करके बताइए। अभी स्मृति शक्ति देखते हैं बिना देखे हुए। धर्म, सत्यम, शौचम, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मृति। वाह, बहुत अच्छा। नहीं तो भक्ति के कारण स्मृति शक्ति कितनी अच्छी हो गई। इन 8 चीजों का गठन होता है कलयुग। लेकिन भक्ति करने से सब बढ़ सकता है। फिर से वृंदावन आके हम कलयुग के बारे में सुन रहे हैं। किसी के कोई प्रश्न है?
सत्य का बारे में बता रहे थे, छोटे मूल सत्य को पालन नहीं करते हैं, लेकिन मूल सत्य का पालन करना इसका मतलब है।
मूल सत्य का पालन करना इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि भगवान परम सत्य हैं और उनकी शरण में जाना हमारा कर्तव्य है, उनकी भक्ति हमें करना, ये मूल सत्य का पालन करना है। कम से कम इतना तो स्वीकार करना कि भगवान परम सत्य है और उनकी आज्ञा के अनुसार हमें हमारे जीवन को बिताना चाहिए।
तो ये पालन करने से अन्य अन्य सत्य पालन
हो जाएंगे, यदि हम वास्तव में करेंगे तो हो जाएंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मर्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। इसका अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? इति मत्वा मीन्स जो इस बात को जानता है वो अनन्य भाव से मेरी सेवा करेगा। तो हम जान जाएंगे कि परम सत्य कौन है। जानने के बाद सत्य का पालन करना चाहिए, मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए, ये मूल सत्य का पालन करना है। ठीक है, प्रश्न ये है कि आजकल प्रभुपाद जी पहले स्पष्ट बताया करते थे कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, लेकिन आजकल सब जगह ऐसे नहीं कहा जाता, भक्तों के प्रचार में भी ऐसा क्यों है? वैसे तो होता है, जैसे जब मंदिरों में बात होती है तो ये स्पष्ट होता है, या भक्तों के बीच में जब बात होती है तो स्पष्ट होता है, श्रद्धालु लोग होते हैं उनके बीच में भी बात स्पष्ट होती है, परंतु देश काल पात्र के अनुसार हमें बोलना चाहिए। कई ऐसे स्थान हैं जिनमें आप ऐसे बात करेंगे आप दोबारा जा ही नहीं पाएंगे, तो कहेंगे ये लोग सांप्रदायिकता के सांप्रदायिक हैं ये लोग, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में हम सांप्रदायिक नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं। कभी कभी प्रचार करने हेतु तो हमें तरह तरह से उस मूल सत्य के पास जाने के लिए तरह तरह की बातें करनी पड़ती हैं। देश काल पात्र के अनुसार हमें इसी सत्य को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भी बहुत सी अन्य चीजें कही, वो सीधे दशम स्कंद में क्यों नहीं आए और कृष्ण लीला का वर्णन ही 7 दिन तक क्यों नहीं किया, जब श्रीमद् भागवत का अंतिम उद्देश्य है दशम स्कंद तक पहुंचना, तो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय कई ऐसे ऋषि मुनिगण थे जो योगी थे, कोई वैरागी थे, त्यागी थे, कर्मी थे, ज्ञानी थे, तो उन सबको साथ को ले जाना था। तो पहले 9 स्कंद तो इसी में गए लोगों को ये स्थापित करने के लिए कि कृष्ण परम सत्य है, फिर आगे चल के उनकी लीलाओं को के बारे में बोलते गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी बहुत कुछ इधर कुछ कहा उधर कुछ कहा, बहुत सी चीज़ें कह दी श्रीमद् भागवत में, क्योंकि जो श्रोतागण है वो इस स्तर पे थे। सभी लोग एक समान कृष्ण भक्त नहीं थे, उनको कृष्ण भक्ति में लाना था उनको, और उनको सबको लाने के लिए फिर एक साथ उठाने के लिए उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया, क्योंकि वो बहुत दक्ष प्रचारक थे। वो जानते थे कैसे परम सत्य को प्रस्तुत करना चाहिए देश काल पात्र के अनुसार। इसलिए आजकल भी हमें देश काल पात्र को देखे जाना चाहिए। जैसे अमेरिका में आजकल एक ऐसे माहौल है कि आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाहिए कि मायावादी ऐसे हैं, आप किसी की भी बुराई करेंगे वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, आपको निमंत्रण नहीं देंगे दूसरी बार, ऐसे एक माहौल हो गया। इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, और विज्ञान से भी उब गए हैं, धर्म से भी उब गए हैं, दोनों में उनको समस्याएं दिखाई दे रही है। इसलिए अमेरिका में जाके प्रचार करने बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहीं कुछ भी ऐसे बोल दिया जिससे उनको लगे उठ के सीधे चले जाते हैं, और स्पीकर बाहर बुलाते भी नहीं है फिलहाल। ऐसे सब माहौल है। या समझ लीजिए कि आप अभी कोई मुसलमान देश में जा रहे हैं, आप कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कह देंगे तो क्या होगा वहाँ, ईरान में, सऊदी अरब अरेबिया में? तो देश काल पात्र के अनुसार किस तरह से धीरे 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 से इस भागवत तत्व को हमें पेश करना है वो देखना चाहिए। सुनने के बाद यदि याद नहीं रहता है क्यों, सुझाव दीजिए, क्योंकि एक तो ये है कि एक कलयुग का गुण ही लक्षण ही है कि वो हमारी स्मृति शक्ति मूल रूप से है ही नहीं, और दूसरी बात कि हम अभ्यास नहीं करते, उतना परिश्रम नहीं करते, और आजकल शिक्षा प्रणाली भी ऐसी बन गई है, तरह तरह से लोगों को बच्चों को सिखाना करना। पहले बचपन में गुरुकुलों में क्या होता था, उनको केवल याद दिलाया जाता था, तुम याद करते रहो याद करते रहो। आजकल लोग कहते नहीं, ऐसे केवल रट मार के करना नहीं चाहिए, उनको तरह तरह से खिलाओ, खेलने दो, ये वो भी खेलना चाहिए ठीक है, लेकिन ये जो मूल वैदिक पद्धति थी उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं शिक्षा प्रणाली में, तो आगे चल के भी वो अभ्यास नहीं होता वो याद रखने की। बचपन से यदि हमें सिखाया जाए कैसे याद करना चाहिए, अभ्यास उसका पक्का कर दें, ऐसे शरीर को भी हम कसरत कर करके उसको ठीक ठाक रखें तो आगे चल के शरीर भी वैसे होगा। बचपन से ही हम याद नहीं करते हैं कुछ, अभ्यास ही नहीं है, तो फिर आगे चल के कैसे याद करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है, उस मजबूत नहीं हो गई हमारी स्मृति शक्ति, इसलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए इसको, फिर हो जाएगा।
निरेश्वर नैस्थिक लोगों के वर्णन और नैतिक थोड़े लोग ऐसे भी है, उनको बहुत फीलिंग है भगवान के लिए और थोड़ा सिगरेट और गुटखा भी खा ले और भगवान के बारे में बोला आई एम ऑल्सो वेरी रिलीजियस।
हाँ, वो भी नए कैटेगरी स ईश्वर अनैतिक, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे भी हो सकते हैं।
से बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वो करते कुछ भी है, बोलते भगवान तो है हमारे हृदय में, है आपके हृदय में, सबके हृदय में, फिर भगवान विषय में आप क्या बताते हैं, ये कोई बताने की चीज है, तो बोलते हैं क्या बताते हो, ये कोई बताने की चीज है। किसी को अगर भगवद गीता विषय में बताया जाए, भागवत में ऐसे कहा है, बोलते हैं ये बताने की चीज नहीं, आप अपना जब करते हो अपने लिए करो, छुपा के करो, किसी को दिखाना नहीं,
अपना पैसा क्यों दिखाते हो सबको, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, किसके लिए करते हो, दिखाने के लिए करते हो ना, ताकि लोग कहें कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी तस्वीर अखबार में छपे। आप ये अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो, आपके पास पैसा है ना, तो आप भी छुपा लो उसको, छुपा लो अपने पैसों को, क्यों बड़ी गाड़ी में घूमते हो, छुपा लो उसको, आपको भी ऐसे उत्तर उसको देना चाहिए, आप भी क्यों ये सब कर, छुपा लो सब कुछ, अपने पैसों जो भी कमाया है ना वो सब रख लो, केवल बक्से में बंद करके नीचे जमीन में रख दो, दफना दो जमीन में, क्यों अच्छा बड़ा घर बनाते हो, छोटे घर में रह जाओ, ऐसे उनको बताओ, है ना। लोग यूं ही बस तर्क करना पसंद करते हैं, ज्ञान अहंकार, बस कुछ कुछ भी मन में जो आया ना शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं,
उसे कई बार करते हैं, हमको ऑफिस में जाते हैं तो
कुछ है। हाँ, तो एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, है ना। हाँ, दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, ये सही बात है, लेकिन शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए। भगवान हृदय में हैं तो इसका क्या मतलब है, उनको पूछना चाहिए। आप बोल रहे हो ना कि भगवान हृदय में हैं, तो भगवान हृदय में हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है, आपके जीवन में क्या असर होगा इसका, उनको पूछिए। क्या समझे हैं आप इस बात से कि भगवान आपके हृदय में हैं? भगवान हृदय में है तो आपको उनका भक्त बनना चाहिए, आपको भी जप करना चाहिए। यदि आपको वास्तव में ज्ञान है कि भगवान हृदय में है,
जब हर कोई कुछ डिस्कशन होता है तब हम बोलते हैं दिमाग, ये दिमाग सोचता है, दिमाग करता है, दिमाग का भी कुछ इंडिपेंडेंस है, दिमाग का कुछ वैसे इंडिपेंडेंस नहीं है ना। अगर हमारे डिवोशनल लाइफ में भी जब हम स्ट्रगल करते हैं कि हम ऑस्टेरिटी करें, मतलब डिवोशन में जाए, वैसे कुछ दिमाग का वैसे कुछ दिमाग गया, दोस्त को अवॉइड करे, थोड़ा ये करे, पर जब स्लोली स्लोली दिमाग भी हमको डिवोशन में हेल्प करता है सच देखे तरह से, पर दिमाग को प्रॉपर जब मेडिटेटिंग इन माइंड बोले थे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में, हाँ, तब डोंट हियर ऑफ दैट रास्कल माइंड, मुंह से बोलो।
माइंड की बात होती है, मन चंचल है, तो चंचल मन को वश में करना चाहिए। कैसे वश में करना है, कृष्ण में केंद्रित करके। कृष्ण में केंद्रित करने से, कृष्ण के बारे में सोचने से फिर हमारा मन नियंत्रित हो सकता है। नहीं तो मन इतना चंचल है कि हमारी इंद्रियों को भी इधर उधर ले जाएगा। वैसे तो कोई चीज पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, परंतु ये मन के अंदर इच्छाओं का भंडार है। अनादि काल से भरे हुए जितने भी हमारे भौतिक इच्छाएं हैं वो सब मन के अंदर हैं, और ये सारी इच्छाएं बीच बीच में हमारे मन में चली आती हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो स्वेच्छा तो है हमारे अंदर, स्वेच्छा तो है, क्योंकि आत्मा ही, आत्मा को भी भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, इसलिए मन के अंदर भी थोड़ी बहुत इच्छा करने की स्वतंत्रता आ जाती है। ठीक है,
क्षमा के बारे में, क्षमा के बारे में आजकल तो लोग बोलते हैं कि क्षमा मतलब कि हमारे समाज का, हमारे माता पिता का ख्याल रखो, हमारे देश का ख्याल रखो, उसको ही क्षमा बोलते हैं।
क्षमा मतलब सहनशील होना। क्षमा का एक अर्थ ये होता है कि क्षमा करना, फॉरगिवनेस। दूसरा अर्थ होता है सहनशील होना। तो सहनशील होने का मतलब है कि जब कोई जीवन में कष्ट आता है मानसिक या शारीरिक, उसको सहन करना। और जहाँ तक अन्य सेवाओं की बात आती है, ठीक है, हम ना तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से सबकी सेवा हो जाती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ठीक है, जड़ वृक्ष के जड़ को पानी देने के समान, ये उदाहरण हमें देना चाहिए। ठीक है, अभी हम कब मिलेंगे, कल फिर से अभी आप तैयार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में संध्या आरती होगी, संध्या आरती के बाद दामोदर अष्टकम वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, फिर यहाँ दामोदर अष्टकम के बाद नीचे भजन वगैरह होंगे, उसके बाद फिर गोपी गीत वगैरह 7:30 बजे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जाके थोड़ा आराम कर लो। प्रसाद की क्या व्यवस्था है? समथिंग इन द नाइट और एटलीस्ट सम फ्रूट, समथिंग यू सी दैट एवरीबॉडी गेट्स, डोंट कीप एवरीबॉडी हंग्री, एंश्योर दैट एवरीबॉडी ईट्स। ओके, यस,
by reading Mundane books, academic books, if we do stage for reading scriptures, what to do?
Don't avoid, stop reading spiritual literature. If you stop reading spiritual literature, then you will lose taste. Even if you are reading your textbooks, if you are still side by side reading spiritual books, you will not lose taste. Side it must go. ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल समय बताएंगे कौन से समय मिलना, कैसे करना, एक बार किसी मंदिर में भी जाएंगे, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ओके, हरी बोल, हरे कृष्णा। कार्तिक का पूरा लाभ ले लो इधर, हाँ, थोड़ा माला भी अच्छा ज्यादा कर लेना। ठीक है, वृंदावन में जो लाभ होता है 1000 गुना ज़्यादा होता है अन्य जगहों के तुलना में, और कार्तिक में वृंदावन में जो करोगे उससे और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति अभी इतने 5-7 दिनों में पूरे से पूरा लाभ उठाओ इसका। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।